नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। वे ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल भी ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभा को संबोधित करेंगे। ये आयोजन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की यात्रा पर जॉर्डन जा रहे हैं। भारत जॉर्डन का 3रा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच लगभग 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने व्यापार, खाद्य सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के लिए इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया।
As I mentioned, the schedule is very busy.
जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है, जिसका अर्थ ये भी है कि नेतृत्व स्तर पर कई बैठकें होंगी और विभिन्न अवसरों पर भी उनकी मुलाकात होंगी। उम्मीद है कि दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय तथा अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बेहद और सफल यात्रा के प्रति आशावादी हैं, जो भारत और जॉर्डन के बीच पहले से ही मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
एंड टेक द रिलेशनशिप टू अ ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड लेवल।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सर्वाधिक विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है। दिल्ली सरकार ने गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए निर्णय लिया। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों और प्रदूषणकारी गैर जरूरी ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने शहर के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी अपने कम से कम 50% कर्मचारियों से घर से ही काम लेने को कहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार परीक्षण किया है। इस उपकरण को भारतीय परिवेश के अनुसार डिजाइन किया गया है, जहां पश्चिमी देशों के मुकाबले कम उम्र में ही लोग स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। संस्थान ने कहा है कि सुपरनोवा स्टंट का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष स्ट्रोक का शिकार होने वाले 17 लाख से अधिक लोगों को मदद मिलेगी। कोलकाता के सॉल्टलेक युवा भारती स्टेडियम में कल हुई घटना के संबंध में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने सॉल्टलेक युवा भारती स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के आयोजक सतद्रु दत्ता को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशीम कुमार रॉय की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इस वर्ष की 4थी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक के संरक्षण और जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव कुमार के गतिशील मार्गदर्शन में किया गया। एशिया कप अंडर 19 के दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3रा T20 मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का 4था मैच बुधवार को लखनऊ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।